शस्त्र बना के शांति को तो क्या हो जाएगा? बहुत हिम्मत आ जाएगी। शस्त्रधारी व्यक्ति जैसे बाबा ने तो एक शब्द बोला, निर्भीक भी रहता है, हिम्मत भी रहती है। हाँ ऐसे ही हो जाएगा। और बोलो, लास्ट में एक दो बात बहुत गहरी थी है? तो बहुत अच्छी बात थी ये। अचानक परिस्थिति आ जाएंगी, संसार का हाल बिगड़ जाएगा, अनेक आत्माएं दुखी हो जाएंगी। हम कौन हैं? पूज्य और पूर्वज। हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, उन्हें सकास देनी पड़ेगी। सीधी सी बात, हमें उन्हें सकास देनी पड़ेगी। ये थी सबसे पावरफुल पॉइंट, क्योंकि ऐसा समय आएगा, भी आता है जहां तहां आ गया। एक्चुअली विनाश से पहले ही बहुत आत्माओं को हमारी मदद की जरूरत है। मुझे तो इसलिए पता चलता है, रोज 5-7 ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपनी कहानी सुनाते रहते हैं, हमारा सुनते ही नहीं, और हम उनकी सुनते हैं, क्योंकि हमें पता है सुनाने से वो हल्के होंगे। दुख भरी कहानी, जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, अंधकार। अब भी बहुत जरूरत है। ब्राह्मणों का हाल है, हमारे पास तो ब्राह्मण आ रहे हैं ना, और बाहर बुरा हाल है और भी ज्यादा, क्योंकि उनके सामने और कुछ नहीं है, बहुत लोग उसी में जी रहे हैं। ब्राह्मणों के सामने कुछ अच्छाइयां हैं, इसलिए ज्यादा फील होता है। क्या बताया? और हाँ, क्यों पे तो आते हैं। हाँ, के कैसे, क्यों, क्यों, कहाँ, के है ना ये के कई के करने वाले के कई बन गए कौवा। और बोलो, मम्मा की, जगदम्बा की फॉलो करो। क्या फॉलो करो? कहा और किया। बहुत अच्छी बात है ना। बाबा ने कहा, किया, शुरू कर दिया। और बोलो, माताएं भी याद कर लो जरा। बोलो और बोलो, और बोलो हैं?
जो थकना नहीं लाया।
हाँ, उसमें बहुत अच्छी बात थी। हाँ, क्योंकि इसमें यही होता है। इससे पहले इस पर हम आए, एक बात और थी, राज्य अधिकारी तैयार हो जाएं तो राज जाने में देरी नहीं। वही ये बात, राज करने वाले राजा तैयार हो जाएं, राज तो बना बना फटाफट प्रजा भागेगी। पहले बाबा ने कहा कि मेहनत हो रही है राजा बनाने की, जिस दिन राजा तैयार हो गए प्रजा तो एक ही दिन में आ जाएगी खींच खींच के। अब आ जाएं हम, जो मुख्य बात थी, एक तो बाबा ने कहा तुमने जग का, दुखों का अंधकार दूर कर दिया ना, रोशन कर दिया जग को। अब आ जाएं जो बाबा ने गिफ्ट ली है क्रोध की, उसमें एक बात ये बहुत अच्छी कि उसमें निराश नहीं होना है। क्यों होती है आत्माएं निराश? क्योंकि ये बात बहुत बार कराई है बाबा ने, फिर हो जाती है। क्यों होते हैं निराश? बोलो, क्या बोल रही थी?
कंट्रोल हो जाता है फिर।
हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि पुरुषार्थ करते हैं, कंट्रोल हो जाता है, फिर आने लगता है तो और उदासी आ जाती है। और बोलो, क्रोध का कारण ईर्ष्या और व्यर्थ। और व्यर्थ में क्या कहा? क्यों, 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 इस पर हम चर्चा करेंगे। और अब बताओ, क्यों और क्यों की बात, क्यों और क्यों की बात,
क्यों खत्म हो जाएगा, क्यों की क्यों खत्म करो तो क्यों लग जाएंगे,
माना प्रत्यक्षता हो जाएगी। और इसमें बहुत अच्छे शब्द थे बाबा के, क्रोध भी प्रत्यक्ष है اس کو ختم کرنے سے یہ بدخستہ ہو جائے گی. بہت اچھی بات ہے کیونکہ پریواروں میں آپ سب جو پریواروں میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں پریواروں کی سیوائے کرودھ مکت ہونے سے بہت اچھی ہوتی ہے. اور جہاں کرودھ زیادہ آتا ہے لوگوں کو جان میں بھی چل رہے ہیں پر کرودھ بہت آ رہا ہے وہاں اور دقت بھی ہوتی ہے لوگ دور ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں. سب جو سیواؤں میں ہیں وہ اپنی اپنی سیواؤں سے بھی جانتے ہیں تھوڑا سا بڑھا دینا بھائی سب اپنی اپنی سیواؤں سے بھی جانتے ہیں سیواؤں میں جس کو کرودھ آتا ہے کیا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے بولو اور کیا ہوتا ہے یہاں سیواؤں کی بات ہم کر رہے ہیں کہیں بھی سیواؤں میں کسی کسی کو کرودھ آ ہی جاتا ہے سنگٹھن ٹوٹ جاتے ہیں ایکتا کا بل سماپت ہو جاتا ہے سفلتا ختم ہو جاتی ہے اور جو کرودھ کرتا ہے اسے کوئی پسند نہیں کرتا. بہتوں کے ساتھ یہ بھی ہو گیا ہے وہ کچھ سال کے بعد ہی اکیلے ہو گئے ہم بھی اس کو نہیں لیتے ہم بھی نہیں لیتے ہم بھی نہیں لیتے اکیلے ہو گئے نراش ہوئے تھے کیونکہ منوش کبھی بھی اپنی کمی کو نہیں جانتا. وہ کہے گا رے گا انہوں نے ایسا کر دیا میرے سے انہوں نے ایسا کیا. اب یہ جو کرودھ کے پیچھے کیوں ہے ہم کرودھ کے کارنوں کو نکالیں گے. ایک تو نراش نہیں ہونا ہے کوئی بات کر رہے تھے ہم سے کہ بھائی بابا نے جو کہا سوپنوں تک بھی نہ ہو تو پہلے تو کئیوں نے پرشن پوچھا سپنے میں بھی کرودھ ہوتا ہے کیا تو جن کو زیادہ کرودھ ہوتا ہے جیون میں ان کو نیند میں بھی اس کا اثر رہتا ہے جس میں جسے لڑائی ہو رہی ہوگی سپنے ایسے آئیں گے نا کس سے لڑائی ہو رہی ہوگی کہیں گڑبڑ ہو رہی ہوگی. تو بالکل اس کو سماپت کریں اور اس کو سماپت کرنے کا ارتھ ہے ہمارا چت پوری طرح شانت ہو جائے. یہ من جیت کی استھتی ہے کرمندریوں جیت سے بھی بڑی من جیت. بابا نے تو کل ابھیکت بابا نے شاید کبھی کبھی بولا ہو بھوت آکار میں تو بولتے ہی تھے کل تو بولا ہے دوسرے نمبر کا بھوت. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں بھوت کا پرکوپ اوشیہ ہوا ہے جو بھگوان کا سنگھاسن ہل گیا ہے تو اس کو آخر یہ دان لینا پڑا کہیں گھٹنائیں ضرور ہوئی ہوں گی سینٹروں میں ہوئی ہوں کہیں بھی ہوئی ہوں کیونکہ یہ تو اگنی ہے نا طوفان ہے یہ تو ایک طوفان بھی ہے یہ اگنی بھی ہے جلاتی ہے سب سے خطرناک نگیٹو اگنی ہے یہ. آگ باہر جو لگاتے ہیں وہ بھی کرودھ سے ہی لگاتے ہیں پر اگر ہمارے پاس یہ اگنی ہے تو کیا جلتا ہے ٹھیک بول رہے سب نے ٹھیک بولا دل جلتا ہے خون جلتا ہے پانی بھی جلتا ہے پانی کے گھٹے مٹکے سوکھ جاتے ہیں اور کیا جلتا ہے رشتے بھی جل جاتے ہیں اور پنیہ جل جاتے ہیں اور سر درد ہوتا ہے وویک نشٹ ہوتا ہے اس سے نرنے شکتی چھین پڑتی ہے اس سے کرودھ ہوگا نرنے غلط ہونے لگیں گے وویک جلتا ہے. ہاں بیماریاں دیکھو جو بھی ہائی بلڈ پریشر والے انہیں ڈاکٹر پہلے ہی کہیں گے کرودھ نہ ہو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے ٹینشن ہے نا اس کے بعد پہلے بھی ٹینشن اور اس کے بعد لمبی چوڑی ٹینشن. اور ایک چیز کرودھ سے جلتی ہے سوکشم چیز ہم نے جو یوگ سے سیواؤں سے شکتیاں جمع کی ہوں وہ جلتی ہیں. تو اگر یوگ بھی ہو اور کرودھ بھی آتا ہو تو آگے بڑھنے کا انوبھو نہیں ہوگا وہ شکتیاں ساتھ ساتھ جل جائیں گی. ہندی میں کرودھ کے لیے بہت اچھا سلوگن ہے دنیا میں کہاوت ہے سچی بات ہے یہ کرودھ کی شروعات مودتا سے ہوتی ہے مودتا और अंत पश्चाताप से और बीच में जलाएगा। क्रोध जब शुरू होगा तो मूर्ता माना बुद्धि की शक्ति खत्म हो गई, बुद्धि काम करना छोड़ दिया। और जब समाप्त होगा तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो क्रोध के बाद पछताता न हो। क्या अनुभव है माताओं का, होता है या नहीं? भाई क्रोध तो सबको ही आया ना कभी ना कभी, पश्चाताप होता है? पश्चाताप होता है, अज्ञानियों को भी होता है, क्योंकि मुख से ऐसे खराब शब्द निकल जाएंगे पीछे आत्मा तो स्वीकार नहीं करेगी, अंदर में शांति होगी, पश्चाताप होगा। तो हमें अब क्रोध को जीतना है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं सोचा कल बाबा पूछेगा, पर बाबा तो क्रोध मुक्त करने पे लगाई हुआ था। हम में से कई बाबा के बच्चे बहुत हैं, मैं सेंटरों में जब बट्टी होती है तो ये प्रश्न पूछता हूँ, कभी जब क्रोध पर चल जाती है चर्चा, तो कौन ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्रोध को बहुत बहुत जीत लिया है? तो हर क्लास में होते हैं, अगर 500 बैठे हैं तो 20 तो हाथ उठाते हैं, बहुत जीत लिया है, रेयरली आता है, कभी नहीं तो नहीं आता। 50% वाले बहुत होते हैं। तो हम में से भी जो अपनी क्रोध मुक्त अवस्था से संतुष्ट हैं, वो जरा हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं हाथ इसलिए भी उठवाया कि अब हम एक प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे और सभी अनुभवी हैं, तो क्रोध के कारण क्या बनते हैं? सबसे अलग अलग कारण बनते हैं। एक तो पहली बात ये, जिससे बहुत ब्राह्मण आत्माएं निकल जाती हैं प्राय, कि क्रोध संस्कार न हो गया हो। ये नहीं कि बिना मतलब भी क्रोध आ रहा हो, क्रोध संस्कार न बन गया हो, इससे प्राय ब्राह्मण आत्माएं निकल जाती हैं। फिर भी किसी में रहता हो, इससे बचना है, क्योंकि अगर क्रोध संस्कार बन गया है तो फिर हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि इसका सीधा अटैक खुशी पर भी होता है, एकाग्रता पर होता है बहुत ज्यादा। सबको अनुभव होगा, थोड़ा भी क्रोध आ जाए लंबे समय तक एकाग्रता नहीं होगी, बाबा से योग का सुख नहीं मिलेगा। अब हम कारण निकालेंगे, जो क्यों कहा बाबा ने, एक तो कहा इच्छा, दूसरा कारण बोलो। हाँ, इच्छा पूरी न, मानसिक हो या स्थूल हो, कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। हाँ, मैं जरा इस बात को ले लूं, एक बात और याद आ गई, गीता में ये है, गीता में तीसरे अध्याय में क्रोध पर चर्चा है, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, तीसरे अध्याय में है। उसमें बहुत अच्छी बात है, गुह्य बात, अच्छी माना गुह्य, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो जिन्होंने व्याख्या की है उन्होंने इसका अर्थ ये कर दिया, काम माना कामनाएं, कामनाएं पूरी न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, ये भी ठीक है, परंतु मूल के लिए है काम विकार से क्रोध का नाता है। काम जीत आत्माएं क्रोध जीत सहज बन जाती हैं, इस पे सभी को ध्यान देना है, क्योंकि ये विकारों का एक दूसरे से लिंक है। फिर लोग बहुत बढ़ता है, मोह, इनका भी देह अभिमान से संबंध है, अहंकार, ये बोल क्या बोल रहे थे, अपमान, अभिमान और अपमान। अभिमान तो क्रोध को जन्म देता ही है, क्रोध का बीज एक और अभिमान, अहम। यही क्वेश्चन उठते हैं मनुष्य के, क्यों, ये जो क्यों आता है ये क्वेश्चन यहाँ उठते हैं, क्रोध का क्रोध का जो बीज है वो अभिमान है। देखो अब क्यों निकालें हम, किसी से ईर्ष्या हो या बदला लेने की इच्छा हो, क्रोध आता रहेगा, बदले की भावना, बदले की भावना स्वयं में ही क्रोध है ना, फुल रूप चाहे न हो, परम दर में क्रोध किसी किसी के लिए समाया रहता है। किसी ने भी जीवन में हमें सताया है, परेशान किया है, किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाया है, उसके लिए बदले की भावना रहती है, क्रोध रहता है मन में। अब क्यों निकाले हम, अहम के कारण क्यों आता है मन में? देखो एक 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 बात ले लेते हैं, फिर आप इस पर चिंतन करना। एक बाप है, उसका एक लड़का है, वो उसकी बात नहीं मानता, क्या उठेगा मन में? अहम के कारण क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन है, मेरी ये क्यों नहीं मानता, तो क्रोध आता है। ये बात होती है, कोई भी बड़ा है, छोटा उसकी बात नहीं मानता, तो ईगो है ना, मैं बड़ा हूं, ये मेरी बात क्यों नहीं मानता, तो क्रोध उत्पन्न होता। ऐसे अब विचार करो, कहां कहां क्रोध आता है, ये बोलो, ये मुझे सम्मान क्यों नहीं देते, बोलो, ये
टाइम पे
क्यों नहीं आते, बहुत है क्यों, 25 हो सकते हैं, 25 क्यों निकालेंगे, ये काम ठीक क्यों नहीं करते,
क्यों ज्यादा सोते हैं,
ये ज्यादा क्यों सोते हैं, क्यों मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, पीछे वाले क्यों से जोड़ो,
क्यों मुझे बोला जाता है,
मुझे ही क्यों बोला जाता है, दूसरे भी तो खाली बैठे हैं। और बोलो, ये समय पे घर क्यों नहीं आते, आजकल तो बहुत हो गया ना बड़े शहरों में। एक कहानी छपी थी कि लड़का किसी भी टाइम आता है, पापा को लड़की कह रही है, ये किसी भी टाइम घर आए, तुम इसे कुछ नहीं कहते, और मैं जरा सी लेट हो जाऊं,
राशन की क्यू में मुझे ही
खड़ा कैसा, राशन की क्यू में मुझे ही खड़ा ये नहीं, वो तो खड़ा रहना पड़ेगा। और बोलो, है गुस्सा आएगा, गुस्सा, गुस्से की बात करो, गुस्सा, इसमें थोड़ा गुस्सा नहीं होगा, निराशा होगी,
मैं सही हूँ, ये गलत हूँ।
और सोचो, ये मेरे आगे झूठ क्यों बोलता है, इसने झूठ बोला, गुस्सा आया, क्यों बोला, गुस्सा आया। बाबा की दो बात याद कर ले, पिछले सालों की मुरलियों में बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा हमें क्रोध आता नहीं, दिलाया जाता है, हमें क्रोध नहीं आता, दिलाया जाता है। और फिर बच्चे कहते हैं कि बाबा परिस्थिति ऐसी होती है कि उस जगह यदि आप भी होते तो आपको भी तो याद है, दो साल पहले बाबा ने कहा था, तो बाप हंसते हैं बच्चों के दूरियान देख कर, परिस्थिति ऐसी होती है। अब और निकालो आगे क्यों,
जैसे बच्चे ऐसे कार्य नहीं करते,
हाँ ये भी एक कारण है। और बोलो,
नीचे करके बात क्यों नहीं करता,
हाँ आंखें ऊपर सिर ऊंचा करके क्यों बात करता है, बहुत अच्छा है। और बोलो, देखो नए नए अनुभव है ना, जिसके हमें तो इसका पता ही नहीं था, माता ने नहीं पॉइंट तो साइड नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है,
भुटली में झुटका क्यों खाते
इसमें गुस्सा थोड़ा ही आएगा, दया
आएगी,
इतने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, ठीक है,
हर बात में बीच में क्यों
बोलता है, हर बात में वो क्वेश्चन ज्यादा क्यों करता है,
बीच में क्यों,
हाँ बीच में क्यों बोलता है। और
बोलो, मैं बोलता हूँ इसको ऐसे कर या जूम करके,
हाँ भाई ठीक से जवाब नहीं देते तो गुस्सा आता है। घरों में सभी देख ले, नुकसान हो गया तब गुस्सा आएगा, तबीयत ठीक ना हो फिर भी काम करना पड़ रहा हो गुस्सा आएगा, उसमें बीच बीच में कोई टोका टोकी कर रहा हो तो भी गुस्सा आएगा, बीमार हो गए हो कोई पूछ न रहा हो, बुखार है फिर भी गुस्सा आता रहेगा, देखा कोई आ ही नहीं रहा मेरे पास, पूछ नहीं रहे हैं मुझे। और बोलो,
गलतियां बार बार करते,
हाँ कोई बार बार गलती करता हो, कोई काम करने में ठंडा हो, बार बार कहने पे भी न सुधार आता हो, अब इन सब क्यों को हम कैसे हटाएंगे, ज्ञान की, सारा ज्ञान की बातें यूज करके, हर जगह ड्रामा नहीं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। हम देखते हैं कि हमारे साथ एक व्यक्ति काम कर रहा है, वो काम करने में ठंडा है, उसको बुद्धि भी थोड़ी ठंडी है, दोनों ठंडाई हैं। हम उसे बताते हैं वो चुस्त होता नहीं है, तो हम क्या समझकर नॉर्मल होंगे, सहज होंगे, गुस्सा नहीं आएगा, क्या सोचेंगे उसको बुद्धि और उसकी कार्य शक्ति कितनी ही है, इससे ही हमें काम लेना है। ऐसे में यदि हम उस व्यक्ति को उमंग दिलाएंगे, थोड़ी उसकी महिमा करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो वो व्यक्ति चुस्त हो जाएगा। लेकिन हम बार बार उसे कहें तुम बड़े ठंडे हो, सुधरने वाले नहीं हो, लगता ठंडे ही रहोगे पूरा कल, तो क्या होगा, हमने स्टैंप लगा दी उस पर, वो ठंडा ही रहेगा। बाबा ये बात बहुत सिखाते आए हैं, ध्यान हो आपको। बाबा ने कहा बाप किसी का अवगुण नहीं देख सकता, क्यों, क्योंकि तो अगर बाबा अवगुण देख ले तो माना उसके अवगुण पर स्टैंप लग जाएगी, वो निकल नहीं सकेगा। यही बात हम सब के लिए है, महात्माएं इष्ट देव देवियां, किसी का अवगुण चित्त पे रख ले ये तो है ही ऐसा, तो वैसा ही रह जाएगा। इसलिए बाबा इस संकल्प के लिए मना करते हैं हमेशा, ये संकल्प फाइनल न कर दो तुम, ये सुधरेगा नहीं, किया हुआ ना कईयों के लिए, कईयों ने, सब ने किया, सब ब्राह्मणों ने, कुछ आत्माएं तो ऐसी हैं हमारे बीच में जिसके लिए सभी ब्राह्मणों ने स्टैंप लगाए हुए, ये सुधरेगा नहीं, फिर शिकायत भी करते हैं ये सुधरता नहीं है, तो स्टैंप तो सबने लगा दी है ना मिलके, ये ऐसा ही रहेगा, सुधरेगा नहीं। घरों में भी माताएं बच्चों के लिए ये संकल्प और ये शब्द न रखें। ऐसे हम जैसी जैसी परिस्थिति, एक व्यक्ति हमारे आगे झूठ बोल रहा, हमें पता है किसने चोरी की है, और हमने उसे पूछा तुमने चीज उठाई, वो हंसते कह देता नहीं, गुस्सा आता है, कैसे यहां ठीक करें, नहीं इस बात में अपने को हल्का कैसे करेंगे, ये तो हम कह देवे अगली बार ऐसा न करना, वो झूठ बोल रहा है हमें पता है, उसको पता और हमें पता है। तो बाबा ने एक बार तो बहुत अच्छी बात कही है कि वो झूठ बोल रहा है तुम गुस्सा कर रहे हो, कौन बड़ा हुआ, महान कौन हुआ दोनों में,
गुस्सा वाला
वो भी गलती कर रहा है, वो भी पाप कर रहा है, तुम भी गलती कर रहे हो, दोनों की गलती हो गई ना। तो हम समझ ले वो झूठ क्यों बोल रहा है, हमारे आगे डर है, उसके पास उसके अंदर डर है, हमने उसको डराया हुआ है, वो हमसे डरता है इसलिए वो सच नहीं बोल रहा है। बाबा के कमरे में जाके सब सच सच बोल देते हैं, देवी देवताओं के मंदिरों में जाके पापी लोग बोल देते हैं मैं पापी हूँ, बाहर नहीं बोलेंगे, क्यों, उनसे उनसे डर नहीं है ना, वो अपने हैं। तो अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसके पीछे हमारे हमारी व्यक्ति उसके मन में भय है, हम इस भय को हल्का करें और इसको समझ लें कि इस कारण बच्चा, घरों में देखो माँ के आगे छोटा बच्चा झूठ बोलता है डर के कारण ना, तो इसमें गुस्सा न हो, अपने को ऐसा समझा दें। और जो परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति बार बार गलती करता है, वही गलती बार बार, काम काज की गलती, और मान लो हम उसे कुछ बुरा बोलते हैं, डांटते हैं, तो गलती सुधरेगी और बढ़ जाएगी। किसी का मन यदि दबाव में रहेगा, किसी के मन में यदि टेंशन रहेगी, तो उसकी गलती रिपीट होने लगेगी। गलती किसी व्यक्ति की तभी सुधर सकती है जब उसे खुला चिंतन का मौका मिले, नहीं तो नहीं। तो हम सभी अब क्रोध मुक्त होने का रिजल्ट होली तक दिखाएंगे। अच्छा, बाबा ने भी जोर दिया, क्योंकि वो भी जानते हैं हम भी जानते हैं क्रोध को जीतना एक दिन का काम नहीं, 15 दिन का काम नहीं है, 15 साल में भी नहीं हुआ, तो निराश नहीं होना है। हमें चेक ये करना है कि हमारी विजय हो रही हो, अगर हमें 80% क्रोध था और 70 हो गया हो, 60, 50 डाउन हो रहा हो, तो हम संतुष्ट रहे और उस यात्रा को आगे बढ़ाए। अब हम कुछ विधि निकाल लें, कौन से स्वभाव हमें क्रोध मुक्त बनाएंगे, चिंतन करें सभी। हाँ ये भी श्याम स्वरूप और वो
प्रेम स्वरूप,
शीतला देवी हूँ,
प्रेम स्वरूप,
प्रेम स्वरूप हूँ, बोलते जाओ, बोलो बोलो,
पूर्वज हूँ,
पूर्वज हूँ तो क्या करूँ, बोलो ठीक है, पूर्वज हूँ तो प्रेम करूँ, क्षमाशील मान आत्मा हूँ, मान आत्माएं क्षमाशील होती है, शांति दूत हूँ, शांति की देवी हूँ, शांति का देवता हूँ, सहनशीलता से भी जोड़ेंगे, सहनशीलता से भी तो जोड़ेंगे ना क्रोध को, सहनशील व्यक्ति को क्रोध कम आएगा, सरल चित्त व्यक्ति को क्रोध कम आएगा, इनसे भी जोड़ेंगे ना इसको, इनका भी हमें बढ़ाना है दोनों को, सहनशीलता भी सरलता भी, और एक तीसरी चीज भी नहीं और एक बहुत अच्छी चीज है, सरलता से जुड़ी हुई है धैर्यता, ये भी प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में, क्रोध को धैर्य से ही जीता जा सकता है, पेशेंस, कुछ ठहरना, थोड़ा ठहरने की आदत, कईयों में कैसी आदत है, तुरंत रिएक्शन, समझते हैं ना, तुरंत रिएक्ट, तुरंत, इसको धैर्य से थोड़ा धीमा करें, स्लो डाउन करें, इसे धीरज, तो क्रोध को जीतने में मदद मिलेगी। एक बहुत अच्छा प्रयोग सभी करेंगे अब, बिल्कुल गुड रिजल्ट वो तो बता है और मिलेगा ही बाबा को, और बाबा तो इस चीज को जानता ही है, हमें ही जीतना है। सवेरे उठते ही, अभी हमारे पास जो 15-16 दिन है बाबा के अगले टर्म तक 16 दिन, मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत चित्त हूँ, तीनों का अनुभव बढ़ाना है, विजयी रतन हूँ, माया पर विजय, क्रोध मुक्त हूँ, इसे हमारा जो अंतर्मन है वो स्वीकार करेगा, क्रोध मुक्त है तो मदद करेगा, और शांत चित्त हूँ, इसको हम दिन में शाम को भी अपने को याद दिलाएंगे, मैं शांत चित्त हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि ये बोलने की हमें आदत पड़ गई है, ये अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है ना, हम हजारों बार सोच चुके होंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लेकिन नो इफेक्ट, इसलिए थोड़ा इसको हम चेंज कर देते हैं, अंदर जाने देंगे अपने, मैं शांत चित्त हूँ, मेरा चित्त, मेरी कर्मेंद्रियां शांत हो गई हैं, गुड फीलिंग के साथ अपने अंदर ये संस्कार भरेंगे, संकल्प भरेंगे, मैं शांत चित्त हूँ, मेरा चित्त, चित्त शब्द सबकॉन्शियस माइंड के लिए, ये अंतर मन के लिए, मेरा चित्त पूरी तरह शांत हो गया है, थोड़ा सा कर्म क्षेत्र पर नो रिएक्शन, इसको सिद्धांत बना ले अपना, नो रिएक्शन। देखो एक भाई आया आज मेरे पास, कुमार है वो, बहुत बड़ी पोस्ट पर भी है, मेरे पास डेढ़ 2 साल पहले आया था, उसकी कहानी सुना दूं, DRDO में साइंटिस्ट है वो, एमटेक किया हुआ है, तो मैंने आज तो उससे पूछा भाई किस थीम पे काम कर रहे हैं आजकल, तो कहा भाई देखो एक प्राइवेट थीम है, हम लोग किसी को बताते नहीं है, तो डिफेंस है, लेकिन हम एक प्राइवेट थीम पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको हम तैयार कर देंगे जल्दी, एक प्लेन बनाने का चल रहा है जो युद्ध के समय में बहुत ज्यादा मदद करेगा, तो मेरे पास वो आया था 2 साल, मेरे से मिलता ही रहता है, अच्छी फ्रेंडशिप है, तो कहा डिप्रेशन बहुत हो गया मुझे, डिप्रेशन खाने पीने का ऐसा हो गया था कि एक एक तोसा खा के 2-2 4-4 दिन तक जीता था,
بالکل ویک ہو گیا. تو کچھ ایسی باتیں ہوئی اچھی, تو اس نے کراٹے سیکھے. تو اب کراٹے میں وہ اتنا ایکسپرٹ ہے, دو سال میں پتہ نہیں کون سی ڈگری بتایا تھا وہ لے لی ہے میں نے, بلیک بیلٹ نہیں تو اور تھی وہ تھی اور تھی. اب اس کا ہیلتھ اچھی ہو گئی ہے, تھوڑا موٹا بھی ہو گیا ہے. تو آج مجھے ملا تو میں نے پوچھا اب تو تمہارے چہرے پہ رونق آ گئی ہے. کہا رہے بھائی ایک ہی سنکلپ نے مجھے جیون میں آنندت کر دیا ہے. دیکھو آتماؤں کے پریورتن کی کیسی گتی ہے. جب یہاں وہ آئی تھی نا اپنی پتری بار پاٹل پریزنٹ ہونے سے پہلے, اور وہ نہیں ٹی وی والوں نے کافی ہا ہو کیا تھا, تو اس پر اس کا بڑا برا افیکٹ ہوا. افیکٹ اس پر اس لیے ہوا کہ اس کے ساتھ ہی سائنٹسٹ اسے پوچھتے تھے تمہارے یہاں سب یہ کیا ہے, تمہارے یہاں ٹی وی والے تو ایسے الٹی سلٹی بات کرتے ہیں نا. تو یہ بہت پریشان رہتا تھا, مجھے فون کیے بابا کو کیوں نہیں ذرا سی اچھی بات بول دینی چاہیے, بابا کے لیے اجازت بولتے ہیں نا, بابا کو یہ کر دینا چاہیے, بابا کو یہ ڈائریکٹر ہے نا صحیح بابا کے بھی. ہمیں بہت سمجھایا لیکن اس کا کچھ شانت نہیں ہوا تھا. تو آج اس نے بتایا کہ میری سمجھ میں ایک چھوٹی سی چیز آ گئی تھی. تو ایک شبد بولا اس نے انگلش میں, نو ججمنٹیشن. ہاں میں نے ایک سدھانت بنا لیا ہے, کسی کے بارے میں بھی جج کرنے کا مجھے تھوڑا ہی ادھیکار ہے. میں کسی کو دیکھتا تھا سوچتا تھا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے, ایسا کرنا چاہیے. کچھ بھی دیکھتا یج میں آئے گا, جو بھی دیکھے گا یہ غلط ہو رہا ہے, ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. بدھیمان بہت بدھیمان آوشکتا سے زیادہ ہے یہ, آوشکتا سے زیادہ سمجھے. ایم ٹیک کا فائنل ایگزام دے رہا, میں نے پوچھا ایگزام پورے ہو گئے ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے, کتنے نمبر آئے, 87%. کہا یہ تو میرے تب آئے, میں نے کچھ پڑھا نہیں تھا, اگر میں پڑھ لیتا تو 97% آ جاتے. آپ سوچے اتنا انٹیلیجنٹ ہے یہ ویکتی. تو جو بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ نگیٹو بات ہوتی ہے کہ وہ زیادہ دیکھتے ہیں, برائی ان کو زیادہ دکھتی ہے, یہ ایسا اور یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. ہم چل بھی رہے ہیں نا, یہ دھیرے کیوں چل رہا, تیز چلنا چاہیے. کوئی تیز چل رہا ہوگا اس کو چلنے کی عقل نہیں, دھیرے چلنا چاہیے. ہنس رہا ہوگا ہے بیٹا زور زور سے ہنستے ہیں, گمبھیر ہوگا دیکھا یہ بھی کوئی گمبھیر ہوتے ہیں, تھوڑا ملنسار ہونا چاہیے, سوچتے ہی رہتے کہیں بھی ترقی نہیں. ایسے بہت لوگ ہیں جنہیں کہیں بھی ترقی نہیں. تو کہا میں نے جب سے یہ سنکلپ کیا 6 ماہ سے, مجھے تھوڑا ہی جج کرنا ہے کسی کو, جو جیسا ہے ٹھیک. کہا میں تو آنندت ہو گیا ہوں. کہا میرے پاس پہلے ٹائم نہیں ہوتا تھا, میں سوچتا تھا میں بہت بزی ہوں, اب میں سوچتا ہوں میں کیا کروں, اتنا ٹائم بچ گیا ہے. سچ یہی ہے کہ بزی منوش ہے ویارتھ میں, جو ویارتھ کو سماپت کرے. کیوں؟ ایک تو بابا نے کروت کے لیے کیوں کہا, اور بھی بہت سارے کیوں ہیں نا. یج میں آئیں گے, ابھی ہمارے پاس 10,000 لوگ آئے, اس میں سے 100 لوگ تو ایسے ضرور ہیں جو گیان یوگ نہ کر کے یہی دیکھتے رہتے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے, گڑبڑ کہاں کہاں ہو رہی ہے, ذرا نوٹ کر لیں لوگ کہاں کہاں یہاں والے ٹائم ویسٹ کر رہے, کیا کیا غلطی کر رہے, نقصان کہاں کہاں ہو رہا ہے, یہ دیکھ لیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, آئے تھے کیا لینے اور کر کیا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے یہ, ہم اپنے کیوں کو گیان یوکت ہو کے سماپت کریں. گیان اس میں گیان چاہیے ہر جگہ کے کیوں کو. بابا نے جو بہت اچھی بات کہی, جو کچھ ہو رہا ہے وہی ستیہ ہے, اور یہاں سبھی نردوش ہیں. دو باتیں اگر ہم لے لیں ڈراما کی گیان کی ساکشی پن کی, تو بہت آنند رہے گا. سب نردوش اس بات پہ بھی ہم وچار کریں تو ہمیں کہیں بھی کچھ سوچنے کی مارجن ہی نہیں, سب کچھ ستیہ ہو رہا ہے, سب نردوش ہیں. میں تو بابا سے سیکھتا ہوں یہ بات, کئی لوگ مجھے کہتے رہتے تھے, بہت سمے سے کہتے رہتے ہیں.
अब ऐसा तो जो सदा से ही कहते हैं ये बात लोग, बाबा क्यों इन चीजों को ठीक नहीं कर देता, यज्ञ ये हो रहा है ये हो रहा है ये, बाबा क्यों नहीं कुछ बोलता, क्यों नहीं ठीक करता, वही डायरेक्टर है ना बहुत लोग। तो मैं बाबा से सीखता हूँ। बाबा बिल्कुल देखो आएगा, लोगों ने लड़ाई की हो, बाबा प्यार बांट रहा है, उसे पता है इन्होंने लड़ाई कर दी है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, निर्दोष है सब, क्योंकि उनका भाग्य उतना ही है ना, निर्दोष है। तो मैं सोचता हूँ, मैं अपने लिए सदैव यही सोचता रहा कि जब भगवान निर्संकल्प और निश्चिंत है, जो यज्ञ का मालिक है, भाई किसी ने कोई फैक्ट्री खोली और उसकी फैक्ट्री में गड़बड़ हो रही है, तो ज्यादा चिंता तो मालिक को होगी या ऑफिसर्स को होगी, ऑफिसर्स को सोचेंगे बंद हो जाएगी कहीं और जहाँ नौकरी करेंगे, लेकिन चिंता तो मालिक को होगी ना। भगवान ने यज्ञ रचा है और उसके यज्ञ में कुछ गड़बड़ हो रही है और वो निश्चिंत मस्त अपनी परम आनंद की स्थिति में, तो क्यों क्यों उसे पता नहीं क्या क्या नुकसान हो जाएगा, उसे पता है नुकसान होगा ही नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक। कई बातें उसके सामने भी राजधानी स्थापित हो रही है। इसके अलावा जो ये संसार का खेल चलता है, सूक्ष्मता से अगर हम देखें तो ये अश्रतन और 108 के आधार से ही चलता है, बाकी सब तो कुछ करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 108 आत्माएं जितनी स्ट्रांग, जितनी प्योर, जितनी निसंकल्प, शुभ भावनाएं रखने वाली, दुआएं देने वाली होती हैं, संसार का कल्याण होता है। तो हम बाबा से बहुत कुछ सीखते हैं, हम क्यों को समाप्त करेंगे और सारे क्यों भी और क्रोध से संबंधित क्यों भी, तो हमारी स्थिति बहुत सुंदर हो ही जाएगी। है सबकी सबकी बहुत अच्छी स्थिति है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ सब कर ही रहे हैं। देखो जो कुछ नहीं कर रहे पुरुषार्थ उनसे वो अच्छे हैं ना जो कुछ कर रहे हैं, और फिर वो अच्छे हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो बाबा हमें पढ़ा रहा है, गाइड कर रहा है, हर 15 दिन का काम दे रहा है ना इस बार। तो पिछली बात भी हम याद रखेंगे, याद है ना, स्वमान और वरदानों के अनुभवी मूर्त बने, पीछे मैंने ये बात कही होगी, कम से कम कोई एक वरदान चुन लें अपने लिए, उसमें एक्सपर्ट हो जाएं, ये मेरे लिए वरदान है बाबा का, नशा हो जाए बहुत, मेरे लिए वरदाता का ये वरदान है, मुझे ये वरदान प्राप्त है, ये वरदान काम करेगा ही, कोई भी ले लो, लेते हैं या नहीं, ले रहे हैं सभी, मैंने भी लिए हुए। मैं जब से सोचा कि मैंने बहुत सारों पे किया है, अब एक विशेष वरदान से मैं भी काम कर रहा हूँ और उसको अपने नशे में लाना, पूरी गुड फीलिंग में आत्मा बिल्कुल स्वीकार कर ले संपूर्ण रूप से, ये मेरे लिए वरदान है, ये वरदान काम करेगा ही। मैं उसके एक्सपेरिमेंट भी शुरू किए और उनका रिजल्ट दिखने लगा है। वरदान सबके पास है, जिसको हम दिल से स्वीकार कर लें, और रोज ऐसा अभ्यास भी करना चाहिए कि वरदाता बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, एक बार जरूर करेंगे रोज, और वो मुझे मुख से ये वरदान दे रहे हैं, जो वरदान हमने चुना है। मान लो आपने चुन लिया, मैं विजयी रतन हूँ, पूरा कल्प मेरी विजय होगी, पूरा कल्प अब माया पर, और जिस जन्म में जहाँ जिस तरह की विजय की जरूरत पड़ेगी वो विजय वहाँ, क्योंकि जो माया को जीत लेते हैं उनकी पूरा कल्प भिन्न भिन्न क्षेत्र में विजय होती है। तो सभी बहुत अच्छा लगन से अभ्यास करेंगे, अगली बार जब हम बाबा के पास जाएंगे तो आनंद पूर्वक जाएंगे, ना डरते नहीं कि पता नहीं बाबा कुछ न ले, आनंद पूर्वक संपूर्ण आत्म सम्मान के साथ कि बाबा पूछे और हम हाथ उठाएं, ठीक है ना। ओम शांति। स्वमान ले लें कुछ,
सोलह दिन के लिए हम स्वमान ले लेते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए मैं विजय रतन हूँ, महानाथा हूँ, बिल्कुल ये संकल्प अपने अंदर भरेंगे, इनसे जुड़े हुए मैं क्षमाशील हूँ, मैं सहनशीलता का देवता हूँ, मैं दाता हूँ, देना है सबको। ये बात सभी अंडरलाइन करके अपने पास लिख कर रखें, परिस्थितियां बदलेंगी, संसार में दुख बढ़ेगा और हम पूर्वज और पूज्य हैं, हमें रहन करना ही होगा, हम बिना उसके रह नहीं पाएंगे, वो हमारा नेचुरल संस्कार होगा, रहम करना, रहम के साथ देना, मुक्त करना उन्हें। आज मेरे पास एक ऐसी बहन आई, अब मैं सोचने लगा इसके लिए क्या किया जाए, भाई ऐसी उसकी समस्या, बहुत शांत भी बेचारी, शादी भी उसकी हुई, कहीं सफलता नहीं, कहीं सफलता नहीं जीवन में, कष्ट ही कष्ट, विघन ही विघन, ज्ञान में भी चल रही है, लोग उसे कह रहे दूसरी शादी कर लो, वो अभी मजबूत है, नहीं मैं नहीं करूंगी, लेकिन ऐसी स्थिति उसकी कि सोचने के लिए मुझे भी सोचना पड़ा कि इसको क्या सिखाया जाए, इसके बाहर योग होता नहीं। मैंने उसको कहा लिख लिया करो मैं एक महान आत्मा हूँ, कि बस पांच ही बार लिखूंगी और नींद आने लगती है। एक और बात में उसने कहा कि हाँ, मैंने कहा व्यस्त मूल्य पढ़ो रोज एक, कहा मुश्किल से मैं दो मिनट पढ़ पाती हूँ, बस नींद आने लगती है। देखो कहा मैं रोज सवेरे बहुत जल्दी उठती हूँ, मुझे लगन है मैं कुछ कर लूं, लेकिन बस बैठते नींद आने लगती है। क्यों होता है ऐसा? तो वो जानती भी थी। मैंने कहा बहन आपके पाप बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आप कहीं भी सफल नहीं, मान लो आपकी दूसरी शादी हो भी गई, वहां भी आप सफल नहीं होंगे, वहां से जब आप छोड़ के आएंगी तो फिर आपका जीवन दुखों का भंडार बन जाएगा, क्योंकि समाज से बहुत बुरी नजर से देखता है ना। तो मैंने फिर उसको कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें बताई, ऐसा ऐसा करो तो देखो निकल जाए तो आत्माओं की ये स्थिति होगी, हम स्वमान और साथ में ये तीन चार स्वमान हम रखेंगे, साथ में बोल योग की विधि कौन सी लेंगे, ऐसी योग की विधि लें जो हमसे सकाश भी मिलती रहे सबको। बहुत अच्छी बात है जो बाबा ने पिछले दिनों सिखाई है, बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं, हमारे नैनों से मस्तक से अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। याद होगा आपको बाबा ने कहा है कर्म अनुसार टाइम टेबल बनाओ, हमने यहाँ चर्चा भी की थी उसकी, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहते हैं वो उस पर ध्यान देंगे। तो ये योग का अभ्यास चलते फिरते बहुत करेंगे, बाबा की किरणें पड़ रही हैं और हमसे फैल रही हैं, हम हो गए मास्टर ज्ञान सूर्य, तो जीवन से विघन भी नष्ट हो जाए। मुझे एक बात याद आ रही थी दो तीन दिन से, बहुत दिन के बाद याद आई, बाबा पहले बहुत ये बात कहा करते थे तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी किरणों से संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। मैंने कभी ये स्लोगन लिख के किचन में लगाया था, तो एक जगह सेंटर में स्लोगन देखा मैंने लिखा हुआ, से देखा नहीं था बहुत साल से, तो याद आया बाबा की ये बहुत अच्छी बात थी। हम संकल्प करें ज्ञान सूर्य की किरणें आ रही हैं, हमसे जो फैलती है हमारी आंखों से मस्तक से अंग अंग से, उनसे संसार से माया के कीटाणु नष्ट होते हैं। तो बहुत बड़ी सेवा हमारे द्वारा ये हो गई, बहुत बड़ा योगदान हो गया ये संसार के लिए, ऐसा हम अभ्यास रखेंगे। तो सभी अपने लिए शुभ भावना रख लें, क्या शुभ भावना, जगदम्बा को फॉलो करने वाली, बाबा ने कहा है हम
पर नहीं बस हम करेंगे, हुआ की हुआ, क्रोध मुक्त होने की बात हुई की हुई। तो हमसे बाबा को पूर्ण प्यार हो जाएगा, बाबा की प्यार की नजर आएगी ना, बाबा कहे यहाँ भी हम किसी को कुछ काम कहे वो फट से करे तो हमारा प्यार होता है ना उससे, वो माँ बच्चे को काम कहे वो फट से करे देखो बच्चा सबसे प्यारा लगेगा। बाबा ने कहा और हम तुरंत शुरू कर दें तो परमात्म प्यार हमें प्राप्त होने लगेगा, शक्तियां भी मिलने लगेगी और हम ऐसा कहें भगवान हम पे राजी हो जाता है तो सभी बहुत मंगलकार से करेंगे। चलो ज्ञान सूर्य की किरणें हमारे ऊपर हमसे चारों ओर फैलकर माया के कीटाणुओं को नष्ट कर रही है।
Thank you.
اللہ علیہ